बाता आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊँटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक भाई ने भोमजी भाई रा घना घना राम राम सा।
राम राम भोमजी भाई, राम राम।
राम राम गवरा बेन।
राम राम भोमजी भाई। भोमजी भाई एक बात बताओ, था ना कदी जूनी बाता याद आवे?
अरे आवे तो है गवरा बेन, पर आज वो सवाल किया पूछियो।
अरे भोमजी भाई, आज कही है की बींदनी एक बात ने घड़ी न घड़ा समझाऊ रे पछे पूछे ही चने। मने तो देखो मारे दादाजी रो कयोडो दुओ याद आ गयो, पण उनने के तो रिसाणी बुझाती।
अरे इसो कोई दुआ है, अबे चौपाल रे भी सुनाई दो, बीननी कहीं सगला ही खुद ही समझ जासी।
भोमजी भाई दुआ तो मैं सुनाऊ ला, पण बीननी ने तो थाने सामणी पड़ेला रिसाणी होगी तो मने ठाकोनी। देखो दुआ तो मैं चौपाल रे मिस सुनाई दू ला।
हां हां बिल्कुल गवरा बहन।
एक बार कथा सुनी ज्ञान आयो सरड।
हाँ।
घड़ी घड़ी कथा सुने कान है के दरड।
कान है के दरड। अरे गवरा बहन इन माय तो रीसरी कोई बात ही कोनी। अरे जिन बात ऊंट री खोड़ ऊंट ही भुगते, इनी बात खुदरी कमियां खुदनी भुगतनी पड़े गवरा बहन।
पण भोमजी भाई कई वेला देखो प्रयास करण सु कमियां निकल भी जावे है। आपा तो इतो जाना हा के जिन बात ऊंट पूछ सु माखी नहीं उड़ा सके नी, इनी बात आपा पावणा बिना ऊंटारी बाता नहीं कर सका।
सोला ना खरी कही गवरा बहन, पर चिंता क्यों करो, ऊंटारी बाता करने आपाने साथे हाजिर है। और अजगा पावणा आज पधारिया है, बहुत दूर से पधारिया है।
वो कठो
देखो पावणा है आप, डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है और आप पधारे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल।
तो सगलों पहला यहाँ स्वागत करो, राम राम कर ला।
बिल्कुल साहब, डॉक्टर साहब आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है। आपने में करा
राम राम सा।
राम राम गौरा बहन, राम राम भोमजी भाई, राम राम।
पण भोमजी भाई थे तो उतावल करण लाग गया, पावणा इतनी दूर से आया पण बाता कहीं करा ला, आ तो बताओ पहला।
बिल्कुल, देखो आज आप बातचीत करा ला ऊंटा में देहिक अनुकूलन और संरक्षण।
तो देखो उतावला सो बावला, पण बावलो आपा ने होणो कोनी है क्योंकि पावणा है साथ है, एक नहीं हाल तो घणकरी बाता पूछनी है। पण भोमजी भाई देखो जिन बात ऊंट ने ऊंटता ही डाण नहीं गातनो नहीं, तो इन अखाने ने ध्यान में रखता थका आपा भी उतावली नहीं कराला और पावणा ने पूछा एक एक कर सवाल। तो डॉक्टर साहब ने सगला सु पहला तो आज पूछ लूं के देहिक अनुकूलन केवे किणने।
देहिक अनुकूलन से हमारा मतलब उसकी ऐसी कार्य विधियों से है पशु के जो उसको उसके वातावरण के अनुकूल बनाती है। ऊंट जो है गर्म इलाके का जानवर है और वो पूरी तरह से इस गर्म वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल है, यानी उसके शरीर को कभी ज्यादा गर्मी ना लगे और उसे ज्यादा पानी ना पीना पड़े और उसे यहाँ रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में आंधियों के वातावरण में ज्यादा तकलीफ ना हो, ये उस अपने आप को उन विकट परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। और इसको इस संदर्भ में बेहतर समझने के लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास देश में 2 कुबड़ वाले ऊँट भी पाए जाते हैं जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं और वहां पर अधिकतम तापमान 20 या 21 डिग्री तक पहुंचता है जबकि न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री नीचे रहता है। अगर वह ऊंट राजस्थान में आकर के हम पालना चाहें तो ये संभव नहीं है क्योंकि वो ठंडे इलाके के ऊंट हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो ऊंट पाया जाता है वो 1 कुबड़ का ऊंट है जो कि गर्म वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित पूर्ण रूप से।
देखो भोमजी भाई, डॉक्टर साहब चौकी तरीके समझा दियो कि देहिक अनुकूलन केवे किरने, हमें देखो लारली बात सॉरी सॉरी समझ में आवेला क्यों।
बिल्कुल सा, अगर ठंडे प्रदेश रो ऊंट है तो वो गर्म प्रदेश रे मायने भी पालन पोषण करण थोड़ो सोरो को बहन क्यों गर्व बहन
मन तो समझ में आएगी।
डॉक्टर साहब अब आप बताओ सा के अब बात करा देहिक अनुकूलन री तो ऊंटा रे वे किसे किसे अंगारी कई कई विशेषता है जिनसे वे मरुभूमि में अनुकूल रहे।
ऊंट जो है इसका बहुत बड़ा एक तो कुबड़ होता है और कुबड़ में बहुत सा वसा इकट्ठा होता है। ये जो वसा है जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि इसके अंदर पानी जमा है, ये एक प्रकार की भ्रांति है क्योंकि ये वसा जो है उपचय के द्वारा ऊंट कठिन परिस्थितियों में जब इसे कुछ खाने को नहीं मिलता तो उपचय के द्वारा इस वसा को पानी और ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा इसको शारीरिक कार्य में सहायक होती है जबकि पानी भी इसे इसके जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो बात हुई उसके उपचय संबंधी, लेकिन इसकी शारीरिक विशेषताएं ऐसी हैं जैसे इसके पांव गद्दीदार होते हैं, गद्दीदार पांव जो है रेत में धंसते नहीं है, और इसमें जो पैर लगा होता है वहां से कोई ऊष्मा जो है उसके पांव में अंदर घुसने नहीं पाती, और दूसरा जो है इसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं और पसीना वगैरह जो निकलता है उससे ये वाष्पीकरण की क्रिया होती है जिससे कि उसे ठंडक मिलती है अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब तापमान अधिक होने पे ऊंट बहुत सी ऊष्मा अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है और जिसे वो रात को छोड़ता रहता है सांस के द्वारा, और इनकी आंखें हैं उनकी आंखों के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं जो कि आंधियों में इनकी हिफाजत करते हैं, नथुनें होती हैं, नथुनों को ये बंद कर सकता है ताकि कोई धूल कण इसके अंदर से प्रवेश न कर सके। इसके अलावा कानों में भी इसके बाल होते हैं जो कि इसको सुनने में तो मदद करते हैं परंतु धूल को अंदर घुसने नहीं देते। इसके अलावा इसकी गर्दन लंबी होती है जिसकी मदद से ये ऊंचे से ऊंचे पेड़ तक पहुंच के चारा चर सकता है, और इसके अलावा धोरों के परली तरफ इसको आराम से देखने में परेशानी नहीं होती। तो ये इसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई।
बोम जी भाई देखो इतनी सारी विशेषताओं हुए नी ऊंठा रे मायने जनी तो अखाणो बनियो है कि ऊंठा रे छाया छपरा कुण करे करण की जरूरत ही कोनी क्योंकि वे आपरी रक्षा खुद ही इन मरुभूमि रे मायने करते है। अब देखो बात आवे डॉक्टर साहब के ऊंट जी को विभिन्न दैहिक क्रियावा करे नी वारे मायने वो संतुलन कायम किया रखे है।
देखिए जो विभिन्न दैहिक क्रियाएं हैं उनके अंदर सबसे पहले आती है बात ताप संतुलन की। ताप संतुलन रेगिस्तानी इलाकों में बहुत गर्मी पड़ती है और इतनी गर्मी पड़ती है कि सूर्य के द्वारा न केवल रेत तपने लगती है बल्कि ऊंट के जो खाल है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो वैसे तो ऊंट कोशिश ये करता है सबसे पहले कि इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करता है कि अधिक तापमान के समय ये उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, और अगर अवशोषण नहीं होता तो या कुछ किरणें सौर किरणें जो हैं वो परावर्तित होकर के वापस वायुमंडल में लौट जाती हैं क्योंकि इसकी जो त्वचा है उसके ऊपर जो बालों का कोट होता है वो काफी मुलायम होता है जो कि सूर्य की किरणों को परे धकेलता है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ गर्मी तो उसमें चली जाती है। तो वो जो गर्मी है उसको वो रात के समय उसको डिसिपेट करता है, उसको हवा में छोड़ता है। जब रात के वक्त तापमान कम होता है तो क्या होता है कि ऊंट का शरीर का तापमान ऊंचा होता है जबकि वातावरण का तापमान कम होता है, तो इसलिए जो ऊष्मा का प्रवाह है वो इसके शरीर से वायु मंडल की तरफ होने लगता है, तो इसलिए रात को वो गर्मी को छोड़ देता है। तो ये तो कहलाता है ताप संतुलन। इसके अलावा है जल संतुलन। जल संतुलन में क्या होता है कि जब इसको पीने के लिए पेयजल की आपूर्ति नहीं होती और काफी लंबे समय तक नहीं होती तो ये अपने हम्प में से अपने कुबड़ में से जो वसा है उसका उपचय शुरू कर देता है। उपचय का मतलब होता है ये एक प्रकार का अपघटन है। अगर 1 किलोग्राम वसा का अपघटन किया जाए तो उससे 1.1 किलोग्राम पानी की प्राप्ति होती है और इसके अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलती है, तो वो इस पानी से अपने जीवन को सपोर्ट कर सकता है। तो ये हो गया जल संतुलन। इसके अलावा ऊंट अपने शारीरिक क्षमताओं के कारण कम से कम पानी का निष्कासन शरीर से करता है। जैसे इसकी मेंगने जो होती हैं वो अपेक्षाकृत सूखी बार आती हैं क्योंकि इसकी जो आंतें हैं वो इसका जो अतिरिक्त पानी है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं जिससे कि जो मेंगने निकलती हैं वो लगभग सूखी सी हालत में होती हैं, पानी की हानि न्यूनतम होती है। इसके अलावा पेशाब करता है तो पेशाब में को बहुत गाढ़ा करता है, तो पेशाब को गाढ़ा करने के लिए इसके गुर्दे जो होते हैं वो बहुत दक्ष होते हैं। गुर्दे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं केवल वो अधिक से अधिक मात्रा में निकलें और जल की हानि न्यूनतम हो। तो ये कहलाता है जल संतुलन।
तो बोम जी भाई देखो ऊंट देही क्रियावां रे मायने संतुलन किया रखे आ तो डॉक्टर साहब आपने चोखी तरीके समझा दियो, पण गवरा बेन चौपाल में आवे नी जरे संतुलन विने भी राखनो पड़े
किया?
के ऊंट पालका सारू तो लाऊं सवाल भेड़ा कर पण पावणारी मनवार सारू पखाल रे मायने घालर लाऊं
गीतड़ला
तो हमें बिसाई दिराउंडो भगत आ गयो है थे तो याद रखो कोनी पण मने तो संतुलन राखनो पड़े के नहीं पड़े है। पण देखो पखाल रे मायने सु गीत काडूला मारे दायरो नहीं
तो
पावणारी दायरो।
अच्छा
तो पावणा ने पूछा के वाने किसो गीत दाय है जिको पखाल।
मुझे एक पुरानी फिल्म का दो गाना पसंद है, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
तो आपसे सुनो सा गवरा बेनी पखाल छू और डॉक्टर साहब री दायरो गीतड़ लो।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।
मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा ओ, 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 हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।
तो सा आभार आप सुनियो डॉक्टर साहब री दायरो गीतरलो गौरव बहनी पखाल छो।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
इन बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति उठारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधारिया है डॉक्टर अश्विनी कुमार राय। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊँटा में दैहिक अनुकूलन एवं संरक्षण।
और डॉक्टर साहब देखो गीतर ले पहला आपा बात करी के दैहिक क्रिया वार मायने संतुलन किया बिठावे, पण बात आवे मरु प्रदेश री तो अपन अठे तो पानी री भी कमी है, पण पानी री कमी होते थका भी ऊंटनी दूध देवे है तो कई आ दैहिक अनुकूलन है।
जी हाँ, ऊंटनी जब दूध देती है तो ये भी एक प्रकार का दैहिक अनुकूलन है। क्यों? आप देखिए कि ऊँटनी के साथ में उसका बछड़ा भी होता है, उसके बछड़े को भी चाहे कितना ही अकाल क्यों ना हो, कितनी पानी की कमी क्यों ना हो, उसके बछड़े को पीने के लिए कुछ ना कुछ तो जल की आवश्यकता होती है। और किसी भी जीव के जो बच्चे होते हैं वो उतने ज्यादा अनुकूलित नहीं होते जितनी की उनकी माँ हो सकती है। तो नतीजा ये होता है कि जब बछड़े को पीने के लिए पानी चाहिए और पानी मिल नहीं रहा है तो ऐसे में बछड़ा कहाँ जाएगा, उसके पास पीने के लिए अपनी माँ का दूध ही एक मुख्य स्रोत है। ऊँटनी के दूध में वसा की मात्रा तो बहुत कम होती है लेकिन पानी की मात्रा पूरी होती है। तो चाहे पानी की कितनी भी किल्लत क्यों ना हो, ऊँट जो है जब दूध बनाता है अपनी दुग्ध ग्रंथियों में तो उसके अंदर वसा कम रहता है और पानी अधिक रहता है और प्रोटीन भी इसमें सामान्य होता है जो कि बछड़े के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि अगर दूध देना बंद कर दे या ऊँटनी का दूध गाढ़ा हो जाए पानी की कमी से तो फिर वो बछड़ा जो है कैसे जीवित रह पाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उसका दूध देना भी एक तरह से अनुकूलन ही है।
आगे समझ में
आई क्योंकि मन रहे मैंने घाट घोट करा जिन सूचक हो डॉक्टर साहब हाजिर है तो यानी पूछ लानी आप।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और अब डॉक्टर साहब आप बताओ कि ऊँटा माय व्यवहारिक अनुकूलन किन बात हुए।
व्यवहारिक अनुकूलन का मतलब ये है कि देखिए ऊँट के अंदर कुछ शारीरिक बदलाव हैं जिनके कारण उसने अपनी कार्य प्रणालियों को इस प्रकार से विकसित कर लिया है कि वो अकाल का और गर्मी का सामना कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार भी हैं जो ऊँट प्रदर्शित करके जिनके द्वारा अपनी कठिनाई को कम कर सकता है। देखिए कैसे कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में ऊँट कहीं ना कहीं बैठना पसंद करेगा। जब ऊँट बैठेगा तो वो इस प्रकार से बैठेगा कि अपनी टांगे नीचे रखेगा और उसके ऊपर अपने शरीर को आके टिका देगा। तो जब वो अपने शरीर को टांगों के ऊपर टिकाता है तो वो गर्म बालू के संपर्क में नहीं आती जिससे कम से कम ऊष्मा ही उसके शरीर में प्रवेश कर पाती है। इसी तरह से जब सूर्य निकलता है तो वह अक्सर अपना सर सूरज की दिशा में या इससे विपरीत रखेगा ताकि उसके शरीर के जो पसलियों वाली साइड है वहां पे ज्यादा धूप ना लगे बल्कि उसके अपेक्षाकृत कम अंगों को ही धूप लगे जिससे कि कम से कम धूप का प्रभाव उसके शरीर पर आए। तो ये कुछ व्यवहारिक खूबियां हैं ऊँट की जिनके कारण वो सौर ऊष्मा से अपने आप को बचाने में सक्षम हो सकता है।
बोम जी भाई देखो समझ में आई कि व्यवहारिक अनुकूलन किण बात हुए है। और डॉक्टर साहब देखो इतने तरीके से आपने समझावे है नहीं समझ में आवे नहीं भी नहीं समझ में आ जावे
बिल्कुल
सा। पर डॉक्टर साहब देखो बात आवे यार संरक्षण री तो उनसे पहला तो बात आ करा के विशेषताओं ने किन बात रो खतरो है कि संरक्षण री बात करनी पड़े आपने।
देखिए हर प्रकार का जीव जो है अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होता है। यदि हम उस जीव को उसके अनुकूलित वातावरण के स्थान पे किन्हीं कठिन परिस्थितियों में डाल दें तो उनका संरक्षण खतरे में पड़ सकता है। जैसे ऊंट जो है खुश्क इलाके का जानवर है, अगर हम इसे समुद्र के तट पे ले जाएं जहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थान पे ऊंट को श्वास लेने में भी तकलीफ होती है और काम करने में भी तकलीफ होती है क्योंकि वायुमंडल में अत्यधिक नमी जो है वो ऊंट के लिए ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस वातावरण के लिए अनुकूलित नहीं है। वो, क्योंकि उसको तो खुश्क माहौल चाहिए, शुष्क वातावरण चाहिए। वहां पर जाकर क्या होगा, अगर गीले वातावरण में ऊंट को रखेंगे तो उसको त्वचा के रोग हो जाएंगे, त्वचा रोग हो जाएंगे, उसकी त्वचा में जख्म बन सकते हैं। और वहां पे अगर एक बार जख्म बन जाए गीली वातावरण के अंदर तो वो बाद में पक जाता है, और पकने से जो है और भी ज्यादा कष्टदायी होता है ऊंट के लिए। तो ऐसे स्थान पे ऊंट को नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे नमी हो, क्योंकि ये खुश्क इलाके का प्राणी। दूसरी चीज ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि अगर ऊंट कोऑपरेट नहीं करता तो जल्दबाजी में जो है हमारे किसान भाई जो है उसकी टांगे बांध देते हैं जबरदस्ती, और टांग बांध के उसको तीन टांग पे चलाते हैं। तो कई बार 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 उसको तीन टांग पे चलाने से उसकी शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती है। कम होने के कारण जो है कई बार वो अगर कठिन परिस्थितियों में आ जाए तो वो भाग भी नहीं सकता और अपनी जान नहीं बचा सकता, और कई बार वो गिरने से अपनी एक आध टांग जो है तुड़वा सकता है, तो ये भी खतरनाक है। तो हमें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़े के अंदर बांधते जुड़ते हुए उसकी पूंछ को बांध देते हैं, और वो पूंछ को इस प्रकार से बांध देते हैं, इतना ज्यादा खिंचाव होता है पूंछ में कि वो उसमें जख्म बन जाता है, तो उसके लिए बहुत कष्टदायी है। इसी तरह आजकल एक फैशन हो गया है कि कुछ लोग जो है ऊंट को सजावट के तौर पे पेश करने के लिए उसके बालों को काट देते हैं। अब आप देखिए कि बालों का जो है एक अहम रोल है शरीर को ठंडा रखने के लिए, और सर्दियों के अंदर सर्दी से बचाव के लिए बालों का रोल है। तो जब सर्दी और गर्मी में अपने आप को कैसे बचाएगा अगर हम उसके बाल ही काट देंगे। इसी प्रकार हमने देखा है कि ऊंट की जो कैपेसिटी है, हम उसकी जो क्षमता है उससे अधिक बोझ उसके ऊपर ढो देते हैं, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आवश्यकता से अधिक भार ऊंट के ऊपर लादने से ऊंट की जो टांगे हैं वो टूट सकती हैं, अधिक बोझ के कारण वो लंगड़ेपन का शिकार हो सकता है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक बोझ भी इनके लिए खतरनाक है। और कई लोग क्या करते हैं कि ऊंटों को रखते तो खुश्क स्थान पे हैं, परंतु क्या करते हैं कि 2400 घंटे उसे बांध के रखते हैं अपने यहाँ। अभी शहर में नहीं गया तो उसको घुमाने नहीं लेके जाएंगे, और उसकी टांगे जो है वो सीधी नहीं हो पाती। टांगे सीधी ना होने के कारण उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, इतना डगमगा जाता है कि वो ये सब काम करने के योग्य नहीं रहते। कई लोग क्या करते हैं कि ऊंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए ट्रक में लाद देंगे और ट्रक में उसकी टांगे बांध देते। लगातार कई घंटे तक टांगे बंधी रहने से ऊंट लंगड़ा भी हो जाता है, और कई बार तो ये भी होता है कि वो कभी भी उठ नहीं पाता। तो हमें इन सब चीजों का तो ख्याल रखना ही है। इसके अलावा कई लोग ये सोचते हैं कि ऊंट को हम सड़क के ऊपर चलाएं, तो ऊंट जो है सड़क पे चलने का जानवर नहीं है। तो यथासंभव यही करना चाहिए कि ऊंट को रेत पे चलाओ, नरम धरती पे, ताकि उसके पांव में जख्म ना हो किसी तरह के। और कुल मिला के बात यह है कि ऊंट का जब तक हम कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक जो है ऊंट स्वस्थ नहीं रह सकता, और हमें इस प्रकार से इसके संरक्षण पे जोर देना पड़ेगा।
बोम जी भाई देखो, हमारी अदस अंगलियां तो कम पड़ गई। इतना सारा कारण बता दिया कि आपने यार संरक्षण की बात क्यों करनी पड़ेगा।
देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप बहुत ही काम री बातें हैं, और आपने ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, और अब डॉक्टर साहब आप बताओ कि ऊंटा की इन दैहिक विशेषताओं रो संरक्षण करने सारो ऊंट पालक ने कई प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले तो जैसे इंसान है, इंसान को क्या चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए और रहने के लिए स्थान चाहिए। तो हमें पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हम इनके लिए उपयुक्त स्थान रखें, रहने को उपयुक्त स्थान दें और खाने के लिए पर्याप्त इन्हें आहार मिले। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं देंगे तो पानी के बिना ऊंट ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता दो हफ्ता रह सकता है, और आहार के बिना हो सकता है चार हफ्ते भी निकाल सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें इसे कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देते। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि ऊंट को कोई भी तकलीफ हो तो उसको जो है किसी ना किसी वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं और इसका उपचार तुरंत कराएं, क्योंकि अगर ऊंट जैसे जानवर को अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसके जख्म पे धूल मिट्टी मक्खी वगैरह पड़ने से वो और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। तो उसे विशेषज्ञ को दिखा करके उसकी सलाह लें और उसका उपचार तुरंत करवाना चाहिए। और तीसरी जो चीजें मैंने आपको कई बातें बताई थी कि लोग जो हैं कई ऐसी बातें कर देते हैं जो कि ऊंट के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण चीजें हैं, जैसे जबरन सड़क के ऊपर चलाना या जबरन ट्रेनिंग देना। और आजकल तो जो है कानून भी बना है कि जानवरों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट के दौरान हम इस बात का ख्याल रखें कि ऊंट को लगातार बांध के एक पोजीशन में ना रखें, और यह संभव हो तो उसे बीच में आराम दें।
बोम जी भाई, ऊंट पालका ने कई प्रयास करना है ये तो डॉक्टर साहब बता दिया, पर मारी पखाल कहवे के मारे सारू भी तो प्रयास करो।
हाँ,
काट दू एक गीतड़ो पखाल मैसू।
हाँ हाँ बिल्कुल सा,
काट दू।
हाँ हाँ,
तो डॉक्टर साहब री मनवार सारू काटू पखाल मैसू एक मीठो सो गीतड़ो।
तो आपसे सुनो सा गौरव बेनी पखाल मैसू एक फूटो सो गीतड़ो। साहब आप सुनियो गौरा बहन पखाल माशू फूट रोसो की तड़ लो इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकार देवसारू पधारिया है डॉक्टर अश्विनी कुमार राय। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंटा में दैहिक अनुकूलन और संरक्षण।
और डॉक्टर साहब देखो जो अबार आप बात करी के ऊंट पालका ने तो दैहिक विशेषता रे संरक्षण सारू ए प्रयास करना चाहिए पर बात आवे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र री तो वे ऊंटा रे देह रे अनुकूलन रे संरक्षण सारू कई कई प्रयास करे है।
राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र जो है इस इलाके में ऊंट पालकों की आवश्यकताओं का भरपूर ध्यान रखता है। समय समय पर कई प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन करते हैं और वहाँ पर उष्ट राय का ऊँटों को पालने वाले लोग वो आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान वहीं संस्थान में भी किया जाता है। उसके अलावा हम गोष्ठी का आयोजन उनके गांव में उनके द्वार पे भी करते हैं। इसके अलावा ऊँटों में छोटी मोटी बीमारियों के उपचार के लिए ये संस्थान वहाँ पर दवाइयाँ वितरित करते हैं। और इसके अलावा मेलों का आयोजन होता है, जो डेयरी मेले हैं उनमें भी हम जो अद्यतन जानकारी है उष्ट पालन के बारे में वो हम ऊँट पालकों तक पहुँचाते हैं। उसके अलावा हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो ऊँटनी के दूध से नए नए उत्पाद कैसे बना सकते हैं और किस तरह से दूध का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं हम ऊँट पालकों को समय समय पर देते रहते।
और मारा ऊँट पालक अगर राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र आवनी चाहे आप वैज्ञानिक का मिलनी चाहे तो कहीं आप लोग मिलो हो वहां से?
बिल्कुल, हर ऊँट पालक का स्वागत है हमारे संस्थान में और हमारे संस्थान में बहुत सी उनके लिए योजनाएं हैं जो जिनका लाभ वो उठा सकते हैं। हम आसपास के गांव में कैंप भी लगाते हैं अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो ऊँटों की इसके लिए। और इसके अलावा अगर किसी को कोई विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए हो तो हम प्रशिक्षण भी देते हैं दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए। और इसके अलावा किसी को और जानकारी की आवश्यकता हो तो वो भी दी जाती है, चाहे वो अन्य पशुओं के बारे में भी क्यों ना हो।
तो बोमजी भाई देखो हाँ। डॉक्टर साहब तो आपा जी को जानकारी चाहिए वो आपने
मिल गई। और देखो अब तो जिका भी ऊंट पालक भाई भी कोई समस्या है और भी कोई समाधान चाहिए तो आप संपर्क कर सके और तो, ए बीरो समाधान करने तैयार बैठा है।
और बोमजी भाई जेन बात राली सी रख जेन री वेनी उनी रो सी ढबे एनी बात जिको ऊंठारी बाता माए आवेला कागज लिखेला जानकारी लेवेला या घर रे मायने बैठर भी रेडियो सुनेला नी तो उन रो ज्ञान जरूर जरूर बदला पण हमें ठिकाणो तो बताणो पड़ी था नहीं।
तो ठिकाणो लिखो सा ऊंठारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर माने आपने कागदारी अड़ी कैसा। तो सा आज देखो चौपाल में जानकारी देवसर पधारिया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल छू डॉक्टर अश्विनी कुमार राय आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है और आज आप बातचीत करी ऊँटा में दैहिक अनुकूलन और संरक्षण। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया और हमारे ऊँट पालका नीति अच्छी और बढ़िया जानकारी दी इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने करा राम राम सा
राम राम।
तो सा आज ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति संयोजक श्री अमित सिंह, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, प्रतिभागिता श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्ष।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
बातां आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां।